नरोत्तम दास ठाकुर जी की, श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, नितय गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। तो नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा लिखित यह भजन था, इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे वैष्णव गोसाई, कृपया मुझ पर इस बार करुणा करो, आपके बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है? ऐसे परम दयालु कोई कहां प्राप्त कर सकेगा जिसके निकट जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। गंगा जल में अनेकों बार स्नान करने के बाद ही कोई शुद्ध हो पाता है, किंतु आपके तो केवल दर्शन करने मात्र से पतित जीवात्माएं पवित्र हो जाती हैं। यही आपका महान गुण है। भगवान श्री हरि के प्रति किए गए अपराधों से मुक्ति हरि नाम के द्वारा मिलती है, किंतु यदि कोई आपके चरणों में अपराध करे तो आप उस अपराध से कदापि ही निस्तार, आपके इस अपराध से कदापि ही निस्तार संभव नहीं। आपके हृदय में भगवान गोविंद सदैव विराजमान होते हैं और भगवान गोविंद कहते हैं, वैष्णव गण मेरे प्राण हैं। अतः मैं जन जन्मांतरों में आपकी चरण धूलने की कामना करता हूं। कृपया नरोत्तम दास को अपना समझ कर कृपा दीजिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की। तो आज बहुत ही विशेष दिन है और पिछले हम देख रहे हैं लगभग 10-11 दिनों से रोज ही विशेष दिन है। 1 फरवरी को बसंत पंचमी थी, 3 फरवरी को अद्वैत सप्तमी थी और फिर हाँ संडे 9वीं को मध्वाचार्य जी का तिरुभाव दिवस, 10वीं को रामानुजाचार्य जी का तिरुभाव दिवस, फिर एकादशी थी, फिर वराह द्वादशी थी, नित्यानंद त्रयोदशी थी और आज पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा, नरोत्तम दास जी का प्राकट्य दिवस। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि रोज ही हमारे लिए महोत्सव है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्राकट्य आज के दिन हुआ माघ पूर्णिमा में, जिस ढंग से भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म जन्मे दिव्यम, इसी ढंग से भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं उनका प्राकट्य भी दिव्य होता है, किसी उद्देश्य के साथ होता है, भगवान के मिशन में उनकी सहायता करने के लिए होता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते अपने भागवतों के तात्पर्य में कि केवल भगवान के अपने शुद्ध भक्तों के आदान प्रदान को अप्रिशिएट करने मात्र से, उनकी महिमा को समझने मात्र से बद्ध जीव का उद्धार हो जाता है। जस्ट बाय अप्रिशिएटिंग द डीलिंग्स बिटवीन द प्योर डिवोटीज इन द लॉर्ड, अ कंडीशन सोल कैन गेट लिबरेटेड। केवल उनके समझने मात्र से। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ नरोत्तम दास ठाकुर जी की जीवन गाथा से, और इस जीवन गाथा के चर्चा से, उनके चरित्र के चर्चा से हम देखेंगे भगवान की महिमा, भक्तों की महिमा और भक्ति की महिमा, कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, भक्त लोग भगवान से प्रेम करने के लिए सभी हदों को पार कर जाते हैं, भगवान भी सभी हदों को पार कर जाते हैं, और भक्ति की क्या महिमा है। जीव चाहे मुक्त अवस्था में हो या पद अवस्था में, यही तीन आश्रय हैं, भक्ति, भगवान और भक्त। मुक्त जीव जो होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, वो पूर्ण रूप से सदैव इनके आश्रित रहते हैं, लेकिन बद्ध जीव का आश्रय हिलता ढुलता रहता है। लेकिन इन प्रेमी भक्तों के जीवन गाथा की चर्चा से हम शुरू हो जाते हैं और हम जान पाते हैं कि भक्ति कितनी महान है, भगवान कितने महान है, भक्त कितने महान है। बस यही अगर हम समझ जाएं, हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का हम सबके जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए 1486 में, तो उस समय समाज की हालत बहुत खराब थी, मुसलमानों का राज्य था और प्रेम को खूब लुटाया। उनके इस प्रेम को समेटा उनके प्रमुख 6 गोस्वामियों ने और उस प्रेम को समेट कर उन्होंने रखा अपने ग्रंथों में। लेकिन उसके बाद महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद फिर से समाज में बहुत कंफ्यूजन था कि कोडिया वैष्णव सिद्धांत क्या है। तो इन्हीं 6 गोस्वामी के द्वारा लिखित ग्रंथों को, जिनमें कि महाप्रभु के प्रेम को समेटा हुआ था, एक सेकेंड जनरेशन आई जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, इन्होंने दोबारा से समाज में क्रांति लाई, दोबारा से पुनर्जागरण लाए और गोस्वामी ग्रंथों को ले गए पूरे देश के कोने कोने में और लोगों को बताया कोडिया वैष्णव सिद्धांत क्या है। उसके बाद फिर इनके प्रकट होने के बाद फिर से समाज में कंफ्यूजन, फिर से तीसरी क्रांति लाने के लिए आए श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्री प्रभुपाद। और अब जाके श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा पूरे पृथ्वी पर, विश्व में जगह जगह पे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का प्रचार हो रहा है। तो जैसे कि भक्तों का प्राकट्य भी दिव्य होता है, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे तो रूप और सनातन से मिलने के लिए वो रामकेली में रुके, और रामकेली में उनसे मिलने के बाद पद्मावती नदी के दर्शन किए, और पद्मा नदी के पूरे गहरे नीले जल को देखते हुए, पद्मा नदी जो है इस तरफ उसके पश्चिमी बंगाल है और इस तरफ पूर्वी बंगाल है, तो पूर्वी बंगाल के उस तरफ खेतरी गांव की तरफ देखते हुए महाप्रभु जोर जोर से बोलने लगे, ओ नरोत्तम, और केवल बोलने ही लगे, पूरे भावेश में आके नृत्य करने लगे, उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। नित्यानंद प्रभु उनके साथ थे, बोले इससे पहले भी महाप्रभु ने नाम कई बार ही पुकारा है, लेकिन आज तो जो इनका भावेश है बिल्कुल ही अलग है। तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को संभालने का प्रयास किया, कोई बहुत चिंतित रहते थे उनके स्वास्थ्य के बारे में। तो महाप्रभु ने बोला कि श्रीपाद आप तो अपनी महिमा जानते नहीं, आप जानते नहीं जब हम जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो आप प्रेम के अश्रु बहा रहे थे, उन्हीं प्रेम के अश्रुओं को मैंने समेट लिया, और इस आपके इस प्रेम को मैं अब आगे आगे एक बहुत महत्वपूर्ण भक्त को दूंगा, उसका नाम होगा नरोत्तम। और तुम जानते हो कि मेरा कीर्तन जो है मेरा जीवन और मेरे प्राण है, और इसी कीर्तन के माध्यम से मैं प्रेम का प्रचार कर रहा हूं। ये नरोत्तम ही हमारे इस धरोहर को आगे बढ़ाएगा, इस पद्मा नदी में मैं इस प्रेम को समेट कर जाऊंगा और नरोत्तम आएगा और इस प्रेम को लेगा। तो देखिए महाप्रभु ने स्वयं आने वाले बालक का नामकरण किया, उसका नाम दिया नरोत्तम। और अगले दिन नित्यानंद प्रभु सब भक्तों इकट्ठे हुए पद्मावती नदी के तट पे, सबने कीर्तन किया, और महाप्रभु जैसे ही पद्मावती नदी में उन्होंने प्रवेश किया, पूरी नदी में बाढ़ आ गई जैसे सुनामी आ गई, और नदी बहुत उछाल आया, और महाप्रभु ने अपने प्रेम को पद्मावती नदी में रख दिया, और फिर वो जो नदी अपने मूर्तिमान रूप में प्रकट हुई महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सामने, बोले आपने मेरे पास इतनी महत्वपूर्ण चीज रखी है और बोला है नरोत्तम को देना है, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगी कौन है नरोत्तम, इतने लोग यहाँ स्नान करने आते हैं, किसको ये प्रेम देना है इतनी महत्वपूर्ण वस्तु। तो बोले महाप्रभु ने बोला जिस प्रकार से मेरे को स्पर्श करते ही तुम्हें इतना हर्ष हुआ और तुमने सारी सीमाएं क्रॉस कर दी, इसी ढंग से जब नरोत्तम तुम्हें प्रवेश करेगा इसी प्रकार महाप्रभु ने अपने भक्तों के लिए पूरा अरेंजमेंट करके गए। तो नित्यानंद प्रभु को का अविर्भाव हुआ जबकि महाप्रभु अपने अंत्यलीला के अंतिम वर्ष में थे 1534 के आसपास, और इनका अविर्भाव हुआ खेतरू नामक ग्राम में, और इनके पिताजी का नाम था कृष्णानंद दत्त और माता का नाम था नारायणी देवी। इनके चाचा थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम दत्त, और उनके एक बेटे थे जिनका नाम था संतोष। तो जब बचपन में इनका प्राकट्य हुआ तो अन्न प्राशन कहा किया जाता है, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो पूरा सेरेमनी हुआ, उत्सव हुआ, तो नरोत्तम बालक को चावल का दाना दिया गया और उसने बिल्कुल अपना मुंह पीछे कर दिया, ले जाओ नहीं खाना। तो सब परेशान, बालक खा के लिया, तभी वहां पर एक वैष्णव ब्राह्मण आए और उन्होंने अपने चावल उसको दिए, क्योंकि उस चावल का क्या लगा हुआ था, भगवान को भोग लगा हुआ था। नरोत्तम ने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया, और सभी भक्त लोग तभी समझ गए कि ये बालक है साधारण नहीं है, केवल प्रसाद ग्रहण करता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और फिर धीरे धीरे उसने विद्यालय में जाना शुरू किया, और बहुत ही मेधावी छात्र थे, श्रुतिधर थे, सब कुछ सुनती उनको याद हो जाता था। लेकिन उनका सबसे प्रमुख जो कार्य था, वहां पे एक वैष्णव थे कृष्णदास, उनके चरणों पे बैठ के गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का श्रवण करना, और ऐसा श्रवण किया और ऐसे हृदय से श्रवण किया, उनके हृदय में गौरांग महाप्रभु के लिए प्रेम विकसित हो गया और उनसे विरह होने लगा। और बचपन में ही उन्होंने ठान लिया कि पूरा जीवन मैंने समर्पित करना है गौड़िया वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार। श्रवण होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, सुनने मात्र से ही प्रेम हो गया और विरह हो गया। तो जब वो लगभग 12 वर्ष की आयु में पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा अब समय आ गया है, तो नित्यानंद प्रभु के स्वप्न में आए और बोले कि अगली सुबह उठते ही सूर्य उदय से पहले आपको जाना है पद्मावती नदी पे और स्नान करना है, तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण चीज प्राप्त होगी। तो रोहतम सुबह जल्दी उठे, नदी पर गए और जैसे ही नदी में उन्होंने प्रवेश किया, नदी में इतना उछाल हुआ, इतना हर्ष हुआ कि वो सारी की सारी उसने सीमाएं क्रॉस कर दी। और फिर उसी समय पद्मा नदी में महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए और महाप्रभु ने रोहतम का जोर से आलिंगन कर लिया, और ऐसा महाप्रभु का गौरांग शरीर, सुनहरी रंग, और ऐसा आलिंगन किया जैसे महाप्रभु बिल्कुल उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, और हृदय में प्रवेश कर गए और नरोत्तम के शरीर की कांति बिल्कुल बदल गई। वो वैसे तो श्याम वर्ण के थे, महाप्रभु के आलिंगन के बाद गौर वर्ण के हो गए। और उसके बाद तो क्या, जब वो नदी से बाहर निकले तो दिव्य उन्माद में अब तो बिल्कुल पागल हो गए, और कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, चैतन्य चैतन्य कर रहे हैं और नाच रहे हैं, भूल गए घर वापिस जाना है और वही नाच कूद करने लगे। घर वाले परेशान, सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले निकल गया बालक और अभी तक वापस नहीं आया, और बहुत ही जिसे कहते हैं नाजुकता से उनको पाला था एक राजकुमार की तरह, बहुत धनाढ्य परिवार था, तो अभी तक बालक नहीं आए। तो पिताजी ने अपने सब सैनिकों को भेजा, जाओ ढूंढ के लाओ। तो ढूंढते ढूंढते गए तो देखा पद्मा नदी नदी के तट पर ये बालक नाच रहा है, कहते दिखने में तो अपना नारू ही है लेकिन ये हो क्या गया इसको। तो जबरदस्ती उसको पकड़ के लाए और घर वाले भी पहचान नहीं पाए ये हमारा ही नारू है क्या। एक तो उसका रंग बदल गया और भाव बदल गया, रो रहा है, हंस रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। तो माँ परेशान हो गई, निश्चित रूप से कोई भी माँ देखेगी अपने बालक को इस रूप में, वो भी ऐसे नाचना तो शुरू करनी देखी। उसने बोला हे भलक, हे नारू, क्या हो गया तेरे को, क्या क्या समस्या है। बोले तेरी क्या मैं सेवा कर सकती हूँ, बता दो। बोला क्या सेवा कर सकती हो, जब मैं स्नान करने गया तो एक बहुत दिव्य व्यक्ति सुनहरी रंग के आए और मेरे हृदय में प्रवेश कर गए और मुझे उनसे प्रेम हो गया है गौरांग महाप्रभु से, और मैं उनके विरह में हूं। अगर तुम मेरी सेवा कर सकती हो तो मुझे आज्ञा दो कि मैं घर छोड़ूं और उनको ढूंढूं। मां ने बोला ये तो संभव नहीं है। तो वो जो नारू बालक था, नरोत्तम था, अपने महल का एक बहुत बड़ा जो उनका कीर्तन का हॉल था वहां जाके जोर जोर से नाचने लगा, श्री कृष्णा बोलने लगा, बोलता रहा घंटों घंटों कीर्तन करने के बाद वो मूर्छित हो गए। तब उनके पिताजी ने दृश्य देखा तो उनको लगा उनकी सारी की सारी योजनाएं अब विफल हो रही है। उनकी योजना थी ये बेटा आगे जाके राजगद्दी संभालेगा, इसके लिए सुंदर लड़की ढूंढूंगा, विवाह करूंगा, ये मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई, क्या करें। लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, उन्होंने अपने बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया, है ना, महंगी से महंगी सिक्योरिटी एजेंसी को बोला इसको निकलने मत देना, रात दिन इस पे नजर रखना, कहीं जाने ना पाए घर छोड़ के। तो अपने ही घर में नरोत्तम जी को कैद कर दिया गया। लेकिन रात और दिन उनका एक ही कार्य होता था, हमेशा गौरांग महाप्रभु के स्मरण में रहना। तो फिर सोचा कोई ठीक तो हो नहीं रहा, तो किसी ने बोला लगता है कोई भूत भूत चढ़ गया इसके ऊपर, ओझा को बुलाया गया। तो एक ओझा को बुलाया गया, उसने पूरा स्टडी किया, बोले घबराने की बात नहीं है, वायु रोग है और कोई दिक्कत नहीं है, ये लो तेल का लेप करो पूरे शरीर पे और इसको लोमड़ी का मांस खिलाओ, उससे ठीक हो जाएगा। जब ये बात रोहतम ने सुनी तो रोने लगे, क्या कहां कृष्ण प्रेम और कहां लोमड़ी, ये मांसाहार नहीं करूंगा। तो उसके पिताजी बात सुन के हाँ मांसाहार तो नहीं करना चाहिए। तो फिर नरोत्तम जी को बहुत दुख हुआ और दुख में वो विरह में गौरांग महाप्रभु को पुकारने लगे कि कब आप मुझ पर कृपा करेंगे। कब मेरा इस पागलपन की दुनिया से मेरा छुटकारा होगा और मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा वृंदावन में आपके वरिष्ठ भक्तों के साथ। इस प्रकार से नरोत्तम जी के अंदर इतनी तीव्रता थी भगवान की सेवा करने के लिए, इतना प्रेम था कि उनको रात भर नींद नहीं आती थी। और कभी कभी अगर नींद आती भी थी तो एक बार थोड़ी सी उनकी झपकी लग गई तो क्या हुआ, फिर से महाप्रभु के स्वप्न में आए। और जैसे कि पद्मा नदी में महाप्रभु ने उनका बहुत प्रगाढ़ आलिंगन किया था, इस बार फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन और बोला, नरोत्तम घबराओ मत, अब समय आ गया है तुम्हारा वृंदावन जाने का, तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए और वहां जाकर मेरे प्रिय शिष्य लोकनाथ गोस्वामी से आप दीक्षा लेना। महाप्रभु ने अपने भक्तों के लिए पहले ही सब व्यवस्था करके रखी हुई थी। वृंदावन में उन्होंने लोकनाथ स्वामी को और मुगर गोस्वामी को पहले ही भेज दिया था। ये तो पहले गोस्वामी थे जो सबसे पहले वृंदावन गए थे और बोला वहां से आके उनको दीक्षा लेना। अब नरोत्तम जी मौका ढूंढ रहे हैं कि कब मैं वृंदावन जाऊंगा। जब उनकी आयु लगभग 16 वर्ष की हो गई तो उनकी ख्याति पूरे बंगाल में फैल गई कि कृष्णानंद दत्त का जो बेटा है इसके अंदर कुछ है, भूत नहीं है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बलवान है। तो एक जय गिरिधर नाम के मुसलमान गवर्नर थे, उनकी इच्छा हुई इस बालक से मैं आशीर्वाद। तो उन्होंने संदेश भेजाया कृष्णानंद जी को कि अपने बालक को मेरे अदालत में भेजो, मैं उसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ, उसके दर्शन करने चाहता हूँ। कृष्णानंद जी घबरा रहे थे, घर से बाहर निकला तो वापस नहीं आएगा तो लेकिन ये सरकारी ऐलान था तो उनको भेजना पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वो गए और उस गवर्नर से मिले और रोहतक भी समझ गए कि अब अच्छा मौका है भागने का। तो कुछ तरकीब निकाल के अपने जो उनके सिक्योरिटी गार्ड से बच कर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। चाहते तो वो नवद्वीप भी जा सकते थे, नवद्वीप पास में था। इनको लगा कि नवद्वीप में जाऊंगा तो उनके पिताजी निश्चित रूप से उनको ढूंढ निकालेंगे, तो उन्होंने दौड़ शुरू कर दी वृंदावन की ओर और वृंदावन की ओर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और भागते रहे, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री गौर निताय। तो जब वो भाग रहे थे नंगे पांव, बिल्कुल राजकुमारों की तरह उनको पाला पोसा गया था और वो जंगल में भूखे प्यासे भाग रहे हैं, पांव में कांटों के ऊपर झाड़ियों से होते हुए जंगल में अकेले जा रहे हैं, पांव में छाले पड़ गए, खून निकल रहा है, भूखे हैं प्यासे हैं। 3 दिन तक ऐसे भागते रहे और फिर वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं हर कदम कदम पे। तो जब वो मूर्छित हो गए तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए एक ब्राह्मण के रूप में, इनका कौर वर्ण का रूप था और ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने नरोत्तम को उठाया, इस बालक को, उठो तुम लगते हो कि बहुत भूखे और प्यासे हो, ये दूध ग्रहण कर लो। महाप्रभु का दूध लाना नरोत्तम के लिए आचार्यगण कहते हैं इसके बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि अपने नित्य सेवा में नरोत्तम जी चंपक मंजरी हैं। मंजरी का अर्थ होता है कम आयु की गोपियां जो कि राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में उनकी गोहितम सेवा करती हैं। और चंपक मंजरी की जो मुख्य सेवा है वो राधा कृष्ण के लिए दूध उबाल कर उनको दूध सर्व करना। तो आज उनके भक्त को दूध की आवश्यकता थी तो कृष्ण स्वयं उनके लिए दूध लेकर आए। लेकिन नरोत्तम इतने थके हुए थे, उन्होंने दूध का लोटा देखा, ब्राह्मण को दर्शन किए, फिर से वो सो गए। अब उनको दूध तो पिलाना था तो क्या हुआ, वो ब्राह्मण तो चले गए, भगवान तो अप्रकट हो गए। अब उनके स्वप्न में आए रूप और सनातन गोस्वामी। उन्होंने बोला, हे नरोत्तम उठो, तुम्हें मालूम है तुम्हें दूध देने कौन आया था? ये दूध देने वाले ब्राह्मण थे, साक्षात चैतन्य महाप्रभु हैं और ये तुम्हारी सहायता करने आए हैं। इस दूध को ग्रहण करो और बढ़ो आगे वृंदावन की ओर और वहां हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीव गोस्वामी हैं, लोकनाथ गोस्वामी हैं, आओ। तो ये उठकर नरोत्तम एकदम आनंद में, लेकिन वो रो रहे थे कि महाप्रभु आए मुझे दूध देने के लिए। तो उन्होंने दूध का पान किया और जैसे वो वृंदावन की ओर भागने लगे वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। ये उनके पिता के द्वारा भेजे हुए अलग अलग गुटों में भेजा था, तो एक गुट था जिसको नरोत्तम मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हो, चलो घर वापस। अब नरोत्तम एकदम, क्योंकि अभी भी महाप्रभु के दिया अद्भुत उन्होंने पान किया था, तो उनके अंदर जो जो शुद्धता थी, जो इनोसेंस थी, जो प्रेम था, तो उन्होंने ऐसे बोला, क्यों मुझे रोक रहे हो? अगर एक सती पत्नी का पति का उसका देहांत हो जाता है, तो उसकी जब उसका दाह संस्कार होता है, तो सती पत्नी भी अपने आप को समर्पित कर देती है और अपने पति के साथ ही अपने आप को उजल जाती है उसमें। तो इसी ढंग से मैं भी कृष्ण प्रेम की अग्नि में जलना चाहता हूं, मुझे रोको मत। लेकिन वो जो सैनिक थे वो छोड़ नहीं रहे थे। बोले हाँ, जब वो सती अपने आप को पति को समर्पित करती है पति की अग्नि में, तो निश्चित रूप से उसके सगे संबंध उसको रोकते तो हैं, इसलिए आप भी मुझे कृष्ण अग्नि में समर्पित होने से रोक रहे हो। लेकिन क्या वो सती का कर्तव्य नहीं है? तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कृष्ण अग्नि में समर्पित होना? इतने प्रेम से और इतने अच्छे ढंग से, कवितापूर्ण तरीके से उन्होंने इस बात को, उपमा को उपस्थित किया कि उन सैनिकों का भी हृदय पिघल गया। बोले ठीक है, आप जाओ। उसमें से एक सैनिक ने अपने जेब से पैसे निकाल कर दिए कि ये रख लो, रास्ते में आवश्यकता पड़ेगी। इसको लेकर नरोत्तम तेजी से आगे भागे और भागते गए, और भागते भागते वो ब्रजमंडल उन्होंने प्रवेश किया। मथुरा के विश्राम घाट में उन्होंने जाके स्नान किया। वहां उनकी भेंट एक वृद्ध ब्राह्मण से हुई और इस वृद्ध ब्राह्मण ने उनको आज्ञा दे दी कि रात्रि को उनके घर में वो विश्राम कर सकते हैं। और इस वृद्ध ब्राह्मण ने नरोत्तम को बताया कि रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, काशीश्वर पंडित, ये सबका तिरोभाव हो चुका है और सब नित्य लीला में प्रवेश कर गए। ये सबका नरोत्तम बहुत कृतन करने लगे कि इन्हीं से मिलने के लिए इतनी दूर से मैं आया और ये सब मुझसे मिलने से पहले ही तिरोभाव हो गया इनका। जोर जोर से रो रहे थे, रोते रोते मूर्छित हो गए। लेकिन जब वो मूर्छित हुए तो कोई आध्यात्मिक दृश्य दिखाई दिया। उसमें रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, काशीश्वर पंडित स्वयं वहां उपस्थित थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। और जो वृद्ध ब्राह्मण जिसके घर में नरोत्तम विश्राम कर रहे थे, वो सारी की सारी वार्तालाप सुन रहे थे और वो चकित हो गए कि ये जो बालक है कोई साधारण बालक नहीं है। स्वयं रूप और सनातन प्रकट हुए इनसे बातचीत करने के लिए, इनका इसका उत्साह बढ़ाने के लिए। और रूप और सनातन ने बताया कि उठो, अभी भी लोकनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो नरोत्तम उठे और फिर वो सबसे पहले वृंदावन में गए, गोविंद देव जी के मंदिर में। गोविंद देव जी के मंदिर में भगवान के सुंदर विग्रह को देखकर, इतने अच्छे मंदिर को देखकर नरोत्तम को अष्टसात्विक विकार उत्पन्न हो गए। ये होते हैं अनशन भक्तों के लक्षण। जब चैतन्य महाप्रभु भी पहली बार जगन्नाथपुरी में गए थे और जगन्नाथ जी के दूर से दर्शन करते ही उनको जगन्नाथ जी दिखाई नहीं दिए, उनको दल दिखाई दिए श्याम सुंदर त्रिभंग रूप में बंसुरी बजाते हुए। और उनको देखते ही जगह 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 कह के वो मूर्छित हो गए। साक्षात वो मूर्ति नहीं देखते, साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। तो गोविंद जी के दर्शन करते लगा साक्षात भगवान है और इतना सुंदर मंदिर देख के मूर्छित हो गए और सात्विक विकार आ गए। तो सबने कहा ये कोई साधारण नहीं है, ये नरोत्तम ही होगा जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और समाचार पहुंच गया जीव गोस्वामी जी के पास कि वो नरोत्तम आ गया है। तो बाकी सब वैष्णव महंत भी थे, सबको मालूम चल गया कि बहुत विशेष वैष्णव आया है। सबके सब गोविंद जी के मंदिर में एकत्रित हो गए और जीव गोस्वामी ने पूछा, क्या तुम ही नरोत्तम हो? बोले हाँ मैं ही नरोत्तम हूँ। तो सबने उनका आलिंगन किया और नरोत्तम ने सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। क्योंकि अब नरोत्तम के स्वप्न में स्वयं महाप्रभु आए थे और महाप्रभु ने आदेश दिया था कि उनके शिष्य लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा लेनी है, तो अब वो लोकनाथ गोस्वामी से मिलने गए। लोकनाथ गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु पहले आ चुके थे कि एक भक्त आ रहा है नरोत्तम, उसको आपने दीक्षा देनी है। और लोकनाथ गोस्वामी जी बहुत ही विनम्र थे, उन्होंने ये संकल्प ले रखा था कि पूरा जीवन मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। क्योंकि बोला अब रूप और सनातन का तो तिरोभाव हो गया है, अब मेरे जीने का क्या लाभ? वो भी सोचे थे कि अब मुझे भी बस माइंड अप करना है और जाना है। लेकिन महाप्रभु के आदेश थे, लेकिन वो बहुत हिचक रहे थे किसी को दीक्षा देने के लिए। तो नरोत्तम आए और लोकनाथ जी ने पहले उनके लिए प्रसाद रखा हुआ था, उनको प्रसाद खिलाया और फिर नरोत्तम ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। लोकनाथ गोस्वामी मुस्कुराए। दीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है प्रेम प्राप्त करना, तो मैं तो बचपन से ही प्रेम मिल गया, अब दीक्षा का क्या आवश्यकता है। बोले नहीं, मुझे एक गुरु चाहिए जो मेरा मार्गदर्शन कर सके। ये भक्ति की प्रकृति है। जितना जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्त अपने आप को उतना उतना हीन समझना शुरू कर देता है। हम लोग अपने आप को माप सकते हैं। कल हमारी बात हो रही थी परम पूज्य भक्ति भक्त ठाकुर स्वामी महाराज से, तो वो कह रहे थे कि भक्ति में उन्नति करते हुए एक अवस्था ऐसी आती है, आनी चाहिए, जब भक्त को ऐसा अनुभव हो कैसे मुझे सारे वैष्णव सहन कर रहे हैं। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि मैं कितने वैष्णवों को सहन कर रहा हूं। जब तक ये भावना है कि मैं सबको सहन कर रहा हूं, मतलब कि अच्छी अवस्था नहीं है। जब ये अवस्था आ जाए, कैसे लोग मुझे सहन कर रहे हैं, धन्य है ये लोग। मेरे को सहन कर रहे हैं। तो इसी ढंग से भक्ति में जब उन्नति होती है तो उस भक्त को लगता है कि नरोत्तम जी को प्रेम बचपन से ही प्राप्त हो गया, स्वयं आलिंगन करके महाप्रभु ने उनको प्रेम दिया। लेकिन वो कह रहे नहीं, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, मुझे गुरु की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें लगना चाहिए हमें कुछ नहीं आता, हमें बहुत ज्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जैसे 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 बताते हैं पेड़ है, पेड़ के ऊपर हम चलते हैं तो टहनियां और पतली होती जाती है और ध्यान से पांव रखना पड़ता है ऊपर। और अगर ये महसूस नहीं हो रहा कि हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, या लोग हमें सहन कर रहे हैं, या मुझ में कमी है, इसका मतलब कुछ बेसिक्स में कमी है। तो दोबारा से बेसिक्स में जाना चाहिए, श्रवण कीर्तन, और ये भावना उत्पन्न होनी चाहिए। नरोत्तम को प्रेम प्राप्त था, फिर वो कह रहे थे अरे मैं मुझे मार्गदर्शन चाहिए, आप मेरे को शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। लोकनाथ जी बोले नहीं अभी नहीं, वो टाल रहे थे। लेकिन नरोत्तम जी को अपनी दृढ़ता दिखानी थी। तो हम जानते हैं नरोत्तम क्या करते थे, अर्धरात्रि में उठ जाते थे, और जहाँ लोकनाथ जी जाते थे नित्य क्रिया करने के लिए प्रतिदिन सुबह, वहां जाके उस स्थान को साफ करते थे और जल से पूरा साफ करके साथ में अपने गुरु के लिए साफ एक लोटा रखते थे और साफ मिट्टी रखते थे, और उस झाड़ू को उसे साफ करके उस झाड़ू को अपने हृदय में लगाते थे और जोर जोर से क्रंदन करते थे, गुरु और गौरांग का नाम पुकारते थे और कहते थे मैं धन्य हो गया ये सेवा करके, और मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता हूं इसी सेवा के माध्यम से, ये सेवा ही मेरा बल है। आप देखिए वो राजकुमार थे और कैसी वो सेवा कर रहे हैं, और ऐसी सेवा करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और कह रहे हैं यही सेवा मेरा बल है। और जब लोकनाथ जी रोज आते थे तो बड़े हैरान होते थे, कौन इस स्थान को साफ करता है, ये बिल्कुल दुर्गंध रहित हो जाता है, इतना साफ सुथरा कैसे। एक दिन की बात नहीं है, लगातार 1 साल वो करते रहे। हम लोग भी कभी कभी उत्साह आता है, मिनियन सेवा करेंगे है ना, 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, और फिर लगेगा कोई देखे तो सही मैं क्या मिनियन सेवा कर रहा हूं। और ये तो अर्धरात्रि में जाग कर, और कुछ दिनों के बाद ये सेवा ऐसी लगने लगी किसी और को लगा कि आप करो भाई, आप सबको करना चाहिए, रोस्टर बनाइए। लेकिन वो कह रहे नहीं तो मैं धन्य हो गया, ये मेरा सौभाग्य है, मैं ये सेवा कर रहा हूँ और 1 साल से किए जा रहे हैं। तो एक बारी लोकनाथ जी ने सोचा देखूँ तो सही कौन है, तो वो भी रात के अंधेरे में जाग गए और झाड़ी के पीछे देखने लगे। उन्होंने कहा नरोत्तम आ रहे हैं, ऐसे साफ कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, जोर जोर से उनका नाम पुकार रहे हैं, और फिर उस झाड़ू को मिट्टी के नीचे छुपा कर रख रहे हैं। तो चाहे लोकनाथ जी तुरंत पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरा सौभाग्य है, ये सेवा ये मेरा असली धन है, ये मुझसे मत छीनिए। रो रहे थे मेरे, ये सेवा मुझसे मत छीनिए। और फिर लोकनाथ जी का हृदय पिघला और उन्होंने कहा कि मेरी दृढ़ता से ज्यादा तुम्हारी दृढ़ता है। मेरी दृढ़ता थी कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता से मैं मजबूर हो गया और उन्होंने उनको दीक्षा दी। इसी तरह से हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज, बिमला प्रसाद जी जब कौर किशोरदास बाबा जी के पास गए, उन्होंने भी उनकी दृढ़ता को चेक किया कि कितना कितनी इच्छा है दीक्षा लेने के लिए। तो कई बार हमारे यहाँ भी दीक्षा के लोग अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा बोला जाए प्रतीक्षा करो, बोले कोई बात नहीं किसी और के पास चले जाएंगे। दीक्षा के लिए कोई ऐसा नहीं है ना, लेकिन ये मापदंड होता है। तो इस ढंग से लोकनाथ जी ने उनको दीक्षा दी, गायत्री मंत्र दिया, और अपने शिष्य की उन्नत अवस्था को देखते हुए उन्होंने बता भी दिया कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। तुम चंपक मंजरी हो और तुम्हारी सेवा है राधा कृष्ण के लिए दूध गर्म करके उनको बस उनको देना। तो इस ढंग से जब उनको अपना स्वरूप ही मालूम चल गया तो एक बारी नरोत्तम जी के स्वप्न में एक बहुत दिव्य महिला प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि कृष्ण मुझे मिलने आते हैं प्रतिदिन मध्याह्न के समय और मेरी सखियां सब मिल के कृष्ण के लिए बहुत ध्यानपूर्वक सेवा करती हैं और उनके लिए दूध उबालती हैं और इसमें बहुत निपुण है चंपक लता सखी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चंपक लता सखी को असिस्ट करना है उस दूध को उबालने में और मुझे और कृष्ण को समर्पित करने में, ये तुम्हारी नित्य सेवा है। ये कहकर वो प्रकट हो गई। ये सुनते देखते नरोत्तम जागे और तुरंत भागे अपने गुरु के पास कि ऐसा ऐसा स्वप्न आया है। उनके उन्होंने बोला धन्य हो तुम, तुम्हें मालूम है एक महिला कौन थी, ये साक्षात राधिका थी, राधा रानी थी, जो कि मैंने तुम्हें जो मंत्र दिया जो स्वरूप बताया उस राधिका जी ने कहा कि अपने गुरु के चरणों की सेवा करो, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी तपस्या में मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ये तुम्हारी सेवा है। तो ये कन्फर्म कर दिया उन्होंने, तो यही तुम्हारी सेवा है। तो अब नरोत्तम क्या करते थे, मानसी सेवा करते थे और ध्यान लगाते थे कि कुछ सूखी लकड़ियां उन्होंने इकट्ठी की हैं, दूध रखा है, दूध को उबाल रहे हैं, दूध उबल रहा है और कभी कभी दूध उबलते उबलते छलक जाता था, बाहर जाता था, तो वो भाग के उसको पकड़ते थे उसको उठाने के लिए, उनका हाथ जल जाता था और जब उनका ध्यान भंग होता था देखते थे वास्तव में उनका हाथ जला हुआ है, हाथ में छाले पड़ गए और फिर वो उस हाथ के छालों के ऊपर वो कपड़ा बांध देते थे। पूरे ब्रज में ये प्रसिद्ध हो गया कि नरोत्तम कैसे लीला में प्रवेश कर जाते हैं और कैसे उनका हाथ जल जाता है। तो ऐसे ढंग से, क्योंकि लोकनाथ जी ने उनको आदेश दिया था कि आगे की शिक्षा के लिए आप जी गोस्वामी के पास जाएं, तो नरोत्तम जी गोस्वामी के पास गए और शिक्षा लेने के लिए। जी गोस्वामी जी ने बोला वो बात तो ठीक है, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, पहले ये बताओ हाथ कैसे जला तुम्हारा। तो जी गोस्वामी ने सब बताया नरोत्तम जी ने कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने गले लगा लिया, बोले वास्तव में तुम चंपक मंजरी हो और ये तुम्हारी नित्य सेवा है। तो ये देखते हैं मुक्त जीवों के बीच में कैसे आदान प्रदान होता है। ये सभी मंजरियां हैं जीव गोस्वामी पाद लोक गोस्वामी। तो उसके बाद जीव गोस्वामी जी के पास दो शिष्य और आए, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य। इन तीनों को जीव गोस्वामी जी ने टाइटल दिया। नरोत्तम जी को बोला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, श्रीनिवास जी को बोला श्रीनिवास आचार्य और दुखी चैतन्य जो आए थे उनको बोला श्यामानंद पंडित। उनको एक बहुत विशेष सेवा दी जो गोस्वामी ग्रंथ थे उनको बिहार, उनको उड़ीसा और बंगाल में इसका वितरण करने के लिए। और वो निकले और जैसे हम जानते हैं कि वीर अम्बीर में कैसे फिर ग्रंथों को चुराया और श्रीनिवास जी तो रुक गए, नरोत्तम और श्यामानंद आगे चले गए। और नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद प्रभु गए बंगाल में और फिर बंगाल में जाके वो खेतरी ग्राम में गए, अपने जन्म स्थान पे वापस गए। और जब खेतरी वासियों को मालूम चला कि नरोत्तम आ रहे हैं, उनके नारू वापस आ गए हैं, हालांकि उनके पिता और उनके चाचा का मृत्यु हो गई थी, उनके जो भाई थे संतोष दत्त वो वहां पे थे और सारे खेतरी गांव के निवासी इकट्ठे हो गए नरोत्तम जी का सत्कार करने के लिए। और नरोत्तम ने उनको बताया कैसे कैसे वृंदावन में उन्होंने दीक्षा ली और किस प्रकार से वो भक्तों की शरण में भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद संतोष दत्त जो कि उस समय राजा थे उन्होंने नरोत्तम जी से दीक्षा ली और फिर नरोत्तम जी ने सोचा कि हम इनको गौर मंडल में जाके उन स्थानों में जाना चाहिए जहां महाप्रभु ने लीलाएं की। तो वो नवद्वीप में गए और वहां पर नवद्वीप में उनकी मुलाकात हुई सच्ची माता के सेवक ईशान ठाकुर से, शिवास ठाकुर के भाई श्रीनिधि श्रीपति से। फिर वो अंबिका कालन गए, वहां पे हृदय चैतन्य थे जो कि गौरीदास पंडित जी के शिष्य, हृदय चैतन्य से उनकी मुलाकात हुई। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के पुत्र अच्युतानंद जी से मुलाकात हुई। खरदा में जानवा माता और उनके पुत्र वीरभद्र से मिले और श्रीहट में गए, वहां उनकी मुलाकात रघुनंदन ठाकुर से हुई। सब सेकेंड जनरेशन जो भक्त थे महाप्रभु के बाद उनसे उनका मिलन हुआ और इन भक्तों से मिलकर उनको ऐसा लगा उनकी भक्ति और आगे बढ़ गई है। भक्त को ऐसा लगता है हमेशा ही उसके साधु संघ की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नो लिमिट टू परफेक्शन, ऐसा कभी नहीं हो सकता हम बोलेंगे हाँ अब मेरी माला में परफेक्शन आ गया, अब मेरी भक्ति परफेक्ट हो गई। देयर इज नो लिमिट टू परफेक्शन। फिर उन्होंने बोला ठीक है अब मुझे जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। पुरी में गए, पुरी में गोपीनाथ आचार्य और गोपाल गुरु इन सबसे उनकी मुलाकात हुई और नरोत्तम फिर वापस खेतड़ी में आए। जब वापस आए तो उनके नाम का एक पत्र आया हुआ था उनके गुरु लोकनाथ गोस्वामी जी का, और उनको आदेश दिया था कि आप खेतड़ी ग्राम में रहिए और यहाँ प्रचार कीजिए, और यहाँ पर आप अर्च विग्रह की अर्चना कैसे होती है इसको स्थापित कीजिए। तो नरोत्तम जी की तो इच्छा थी वापस वृंदावन जाने की, लेकिन अपने गुरु के आदेश पाके उन्होंने फिर खेतड़ी में ही प्रचार करना शुरू किया। और उन्होंने सोचा कि गुरु के आदेश है अर्च विग्रह की स्थापना करनी है, तो उन्होंने निर्धारित किया आने वाले गौर पूर्णिमा के दिन ये अर्च विग्रह की स्थापना की जाएगी। तो उन्होंने 6 अर्च विग्रह की स्थापना का घोषणा की गौर पूर्णिमा के दिन, और इसको एक गौर पूर्णिमा वो महोत्सव के रूप में बनाने की घोषणा की। और चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद पहली बारी गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा खेतड़ी ग्राम में। बहुत बड़े स्तर पे तैयारियां शुरू हो गई बहुत महीनों पहले, और जगह जगह निमंत्रण भेजे गए सभी वैष्णवों को दूर दूर से कि सभी वैष्णव आए। वैष्णवों के साथ साथ अलग अलग जमींदारों को, विशेष विशेष वीआईपीज को, हम देखते हैं आप पढ़ेंगे भक्ति रत्नाकर में अन्य ग्रंथों में, जो आजकल हम उत्सव मनाते हैं बिल्कुल उसी ढंग से वीआईपीज को पकड़ा गया, जमींदारों को और राजाओं को, बड़े बड़े लेखकों को, कवियों को, पंडितों को, सबको निमंत्रण दिया गया। और इसका खर्चा कैसे किया जाएगा, नरोत्तम जी ने कहा कि बढ़िया से बढ़िया प्रबंध होना चाहिए अतिथि सत्कार के लिए, लेकिन इसमें धन लगेगा। तो उनके शिष्य थे जो राजा थे, क्या नाम था उनका, संतोष दत्त, मुझे चिंता ना करे सब स्पॉन्सर करूंगा मैं। तो स्पॉन्सर मिल गए और उन्होंने अर्च विग्रह की स्थापना के लिए बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, और उस मंदिर में क्या क्या व्यवस्था थी, बहुत बड़ा कीर्तन का हॉल था, बहुत बड़ा एक भंडार था अन्न रखने के लिए, एक भक्तों के रहने के लिए आश्रम था, एक गेस्ट हाउस था, और एक बहुत बड़ा गार्डन था, और एक बड़ा बहुत बड़ा कुंड था स्नान करने के लिए। इतनी सारी सुविधाएं और जगह जगह निमंत्रण भेजे गए, और दूर दूर से भक्त लोग आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, जाजग्राम एक स्थान है जहां से आए श्रीनिवास आचार्य और उनके शिष्य, साथ में रामचंद्र कविराज और उनके भाई गोविंद कविराज, खरदा से आ रहे हैं जानवा माता जी, जानवा माता जी उसमें जितने भी वैष्णव थे उन सबके आचार्य थे, और नवद्वीप से भक्त लोग आ रहे हैं, जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं, चारों तरफ से भक्त आ रहे हैं। और जब वो पैदल चल रहे हैं साथ साथ में सब गांव वालों को बोल रहे चलो चलो खेतड़ी में, तो हजारों हजारों की संख्या में भक्त हो गए और सब पहुंच रहे हैं, और वहां पर वो उत्सव शुरू होता है। गौर पूर्णिमा का पहला महोत्सव खेतड़ी गांव में मनाया गया, और जब उत्सव हुआ तो उसका सबसे पहले मंगलाचरण किया रघुनंदन ठाकुर ने, और विग्रह 6 विग्रह लिए गए। इन 6 विग्रह के नाम थे, एक तो गौरांग जी का विग्रह था, एक श्री कृष्ण का विग्रह था, एक ब्रजमोहन का विग्रह था, एक वल्लभी कांत विग्रह थे, एक राधा रमन, एक राधा कांत, 6 विग्रह लिए गए। और श्रीनिवास आचार्य जी ने अभिषेक करना शुरू किया, तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण हुआ, अच्छे ढंग से अभिषेक हुआ, फिर सब कीर्तन हॉल में आ गए, और कीर्तन हॉल में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन शुरू किया। वो जो कीर्तन था एक अलग ही कीर्तन था। इस खेतड़ी गांव में इस गोड़िया गौर पूर्णिमा महोत्सव को मनाने के पीछे बहुत से उद्देश्य थे, क्योंकि उस समय भी, क्योंकि गोस्वामी ग्रंथों का इतना भी प्रचलन नहीं हो पाया था, तो सिद्धांतिक रूप से क्या गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी, तो अलग अलग से ग्रुप्स बन गए थे। तो सभी ग्रुप्स को इकट्ठा किया गया ताकि आपस में आदान प्रदान हो, एक दूसरे को सब समझे, और गोस्वामियों के जो उनकी शिक्षाएं हैं उसके सार को स्थापित किया जाए, एक सिस्टमेटिक तरीके से गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का पालन किया जाए, तो ये मुख्य उद्देश्य था। और नरोत्तम जी ने कीर्तन शुरू किया, और कीर्तन की एक नई शैली को उन्होंने प्रस्तुत किया। इस शैली को बोलते हैं पदवली कीर्तन, और इस पदवली कीर्तन में द्रुपद तकनीक को अपनाया जाता है। इस कीर्तन में उन्होंने पहले क्या किया, गौरांग महाप्रभु के विषय में गौरचंद्र का कीर्तन करते करते धीरे धीरे राधा कृष्ण के कीर्तन की ओर बढ़े, और इतना सुंदर उसमें राग, इतना सुंदर उसमें ताल, अभिनय, नाट्यम सब करते हुए बढ़िया वाद्यों के साथ बजते हो, कीर्तन बढ़ता गया आगे, बढ़ता गया बढ़ता गया। और जैसे जैसे कीर्तन आगे बढ़ता जा रहा था, भक्त लोग भावेश होकर नाच रहे थे, रो रहे थे, लेकिन रोतम जी अपना कीर्तन बंद नहीं कर रहे थे। कीर्तन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया कि वहां पर स्वयं महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुए और सब भक्तों के बीच में नाचने लगे। आप कल्पना कीजिए कि 50-60 वर्ष पूर्व महाप्रभु अप्रकट हो चुके थे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, शिवास ठाकुर, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी के सब जो कि वैष्णवगण महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अप्रकट हो गए थे, सबके सब वहां उपस्थित हैं और हजारों हजारों भक्त उनके साथ नाच रहे हैं। और क्या हालत होगी, पत्नी रत्नावर ने लिखा है, सोचिए जानवा माता को अपने पति को देख लिया, नित्यानंद प्रभु हैं अभी यहाँ पे। श्रीवास ठाकुर के छोटे भाई श्री नदी और श्रीपति अपने बड़े भाई को देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे, उनके साथ नाच रहे हैं। अच्युतानंद अपने पिता अद्वैताचार्य को देख रहे हैं, अरे बोले ऐसा नाच रहे जैसे मुझसे भी ज्यादा युवा हो, और सब नाच रहे हैं। हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब नाच रहे हैं और देर तक नाचते रहे। और कहा जाता है कि इस उत्सव से पहले महाप्रभु प्रकट हुए थे नरोत्तम दास जी के स्वप्न में और बोले थे, तुम्हारे इस पहले गौर पूर्णिमा महोत्सव में मैं स्वयं आऊंगा और सबके साथ नृत्य करूंगा। और महाप्रभु ने अपने वचन को रखा। और देखिए किस प्रकार से भक्तों को प्रसन्न करने के लिए महाप्रभु प्रकट हो गए सब अपने पार्षदों के साथ, और कीर्तन देर रात तक चलता रहा। सब भक्त लोग रो रो कर उनके कपड़े गीले हो गए। हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्या दृश्य होगा, क्या दिव्य दृश्य होगा। और खेत्री गांव में काफी देर तक रात तक जब कीर्तन होता रहा, उसके बाद कीर्तन समाप्त हुआ। और कहा जाता है कि ये उत्सव सबके हृदय में ऐसा समा गया कि ये हमेशा अनंत उत्सव बन गया, सबके लिए हमेशा सबके स्मरण में ये दृश्य रहेगा, कैसे महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आए और सबके बीच उन्होंने कीर्तन किया, नृत्य किया। तो इस ढंग से नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत प्रचार किया, उन्हें बहुत से शिष्य बनाए और उनके शिष्य बनाए गए बंगाल में, उड़ीसा में, अलग स्थानों में गए, मणिपुर में गए, और मणिपुर में जो वैष्णव धर्म फैला वो नरोत्तम दास जी के शिष्यों के द्वारा ही फैलाया गया। क्योंकि दिखने में उनका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ, कायस्थ परिवार में हुआ, लेकिन बहुत से बड़े बड़े ब्राह्मणों ने उनसे दीक्षा ली, गंगा नारायण आचार्य, रामकृष्ण आचार्य। तो जो सम्राट ब्राह्मण थे वो बड़े क्रोधित हो गए, बोले ये तो हमारे ब्राह्मण धर्म का नाश कर देगा, ये शूद्र होकर ब्राह्मणों को दीक्षा देना है, ये कैसे हो सकता है। तो एक बार नरोत्तम जी किसी विद्यालय के सामने से निकल रहे थे तो एक ब्राह्मण था, स्मार्ट ब्राह्मण, उन्होंने उनको गालियां देनी शुरू करी, अरे शूद्र, संकोच में नहीं आता ब्राह्मणों को दीक्षा देते हो। तो बहुत उनको गालियां दी, कोसा उनको। तो क्या हुआ, तुरंत उस ब्राह्मण को कौड़ का रोग हो गया, और उस कौड़ के रोग से वो इतना पीड़ित था, उसने सोचा मैं अपने जीवन का अंत कर लेता हूं, और वो नदी में जाके कूदने लगा। तभी दुर्गा माता जी प्रकट हुई, बोले मूर्ख, तू लाखों बारी भी मरेगा तब भी तेरे पाप या अपराध माफ नहीं होगा, जा नरोत्तम के पास और क्षमा मांग, तभी तेरे अपराध माफ होंगे। बोले अब क्या करेंगे, और तो कुछ बचा ही नहीं उसके बाद। नरोत्तम जी के पास गया, उनके चरणों में पड़ा, क्षमा मांगे। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उनको क्षमा कर दिया और उनके कोड का रोग ठीक हो गया। इसी ढंग से एक गांव था गोपालपुर ग्राम, जिनमें एक विप्रदास ब्राह्मण का एक चावल के खेत का खलिहान था, उसमें बहुत विषैले विषैले सांप थे, कोई वहां जा नहीं सकता था। नरोत्तम दास जी वहां जाने लगे, सारे गांव वाले उनको रोका, वहां मत जाइए, लेकिन नरोत्तम ने कहा मैं जाऊंगा। और वहां पर जैसे ही गए तो सारे के सारे सांप भाग गए, और जब सांप भागे अपने आप नरोत्तम दास ठाकुर जी की गोद में विष्णु प्रिय जी का विग्रह आ गया। तो केवल नरोत्तम ही जानते थे कि इस स्थान पर विष्णु प्रिय जी का एक विग्रह है, तो वहां पर गए और विष्णु प्रिय के विग्रह के लिए वहां पे सांप थे, और कोई सांप कोई साधारण व्यक्ति वहां जाता नहीं था। तो विष्णु प्रिय जी के विग्रह इस प्रकार से प्रकट हुए, अभी भी बंगाल के गांव में वो विग्रहों की पूजा की जाती है। इस प्रकार से एक बार नरोत्तम दास ठाकुर जी पद्मावती नदी के तट पे रामचंद्र कविदास जी उनके बहुत विशेष मित्र थे, आप देखते हुए जैन प्रेम धन जो भजन है उसमें, और रामचंद्र कविदास जी के और श्रीनिवास आचार्य जी के तिरुभाव के बारे में लिख रहे हैं, और जो भजन है श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे उसमें रामचंद्र कविदास जी का संग मांग रहे हैं। रामचंद्र कविदास जी श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य थे, लेकिन उनका बहुत मैत्री भाव था गौतम दास ठाकुर जी से। ये दोनों बैठे थे पद्मावती नदी के तट पे, तो उन्होंने देखा कि दो बालक हैं वो भेड़ और बकरी चरा रहे हैं। तो गौतम दास ठाकुर जी ने बोला, ये बालको क्या समझते हो, भेड़ और बकरी चला के कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? तो बालक हैरान हो गए, ये बात तो कभी सोची नहीं। तो दोबारा आए उनके पास, बोले क्या है बताइए। तो बोले आप कौन है? बोले हम पास के गांव से हैं, हमारे पिता का नाम शिवानंद आचार्य है, मेरा नाम हरि नाम है, इसका नाम रामकृष्ण है। बोले भेड़ बकरी क्यों चढ़ा रहे हो? बोले हमें दुर्गा जी को भी बलि चढ़ानी है, हमारे पिताजी दुर्गा जी के बड़े भक्त हैं, तो उनको बलि चढ़ाने के लिए हमें गाय और भेड़ और बकरी ले जा रहे हैं। नरोत्तम ने बोला अच्छी ये हिंसा कर रहे हो, इस कर्म कांड से कुछ नहीं मिलने वाला, आप भगवान के निष्काम भक्ति करो, निष्काम भक्ति से ही जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हो। पहली बार उन्होंने ये बातें सुनी, तो ये बात हमारे पिताजी ने बताई नहीं हमें। तो बोले ठीक है, तुरंत वो पद्मावती नदी में स्नान किया और नरोत्तम जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेके सर मुंडवा लिया, 12 तिलक लगा लिए, गले में कंठी बना ली और वहीं रहने लग गए उन्हीं के आश्रम में। उनके पिताजी को मालूम चला कि दो बेटे क्या हो गए, उन्होंने बोला नरोत्तम जी ने दीक्षा ले ली, बड़ा गुस्सा आया। नरोत्तम ने बोला जाओ अपने पिता को मिल के तो आओ। तो वो अपने घर में गए तो अपने बेटों को देखा, 12 तिलक लगाए हुए कंठी डाली हुई, बोले क्या किया तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक वैष्णव से दीक्षा ले ली, ब्राह्मण होते हुए वैष्णव से दीक्षा ली, दुर्गा की पूजा को छोड़कर नारायण की पूजा शुरू कर दी, पतन हो गया तुम्हारा। तो फिर उन बालकों ने उनको ज्ञान दिया जो उन्होंने सीखा था नरोत्तम दास ठाकुर जी से निष्काम भक्ति का। तो बोले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं तो नहीं हरा पाऊंगा। उन्होंने मिथिला से एक विशेष ब्राह्मण बुलवाया जिसका नाम था मुरारी, बोला इनको हराओ, मेरे बालकों को ब्रेन वॉश हो गया, इनको ठीक करो, डी प्रोग्राम करो इनको। लेकिन उनके सामने आए तो दोबारा से उन बालकों ने उस मुरारी को भी हरा दिया, वो मुरारी बेचारा सर झुका के चुपचाप भाग गया। तो शिवानंदाचार्य ने सोचा ये क्या हो गया, तो बड़े परेशान थे वे। तभी दुर्गा माता उनके सपने में आई, बोले क्यों जिद कर रहे हो, ये तो मेरे स्वामी हैं जिनकी ये पूजा करते हैं, तुम भी अपने आप को समर्पित कर दो, अपने जीवन को सिद्ध करो। और शिवानंदाचार्य जी ने भी नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से बहुत से ब्राह्मणों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की, लेकिन अभी भी जो ब्राह्मणों का जो रोष था वो समाप्त नहीं हो रहा था। वो पास के एक राजा थे नरसिंह राजा, उनके पास गए, बोले राजा का कर्तव्य होता है ब्राह्मणों की रक्षा करो, हमारे ब्राह्मण धर्म को नाश किया जा रहा है, एक शूद्र ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे राज्य का, हमारी रक्षा नहीं करोगे तुम। तो राजा भी बड़े पैनिक में आ गए, बोले क्या है बताओ। बोले नरोत्तम पूरा सबका धर्म का नाश कर रहा है। तो बोले ठीक है आप जाइए इसको पकड़ के लाइए। तो सारे सारे स्नात पंडित थे ब्राह्मण थे चले, और ये बात पहुंच गई नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिष्य गंगा नारायण आचार्य और रामचंद्र कविदास जी के पास। उन्होंने कुछ उन्होंने योजना बनाई। तो वो जब आ ही रहे थे खेतरी में, खेतरी के पास एक गांव है कुमारपुर, उससे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। तो गंगा नारायण आचार्य और रामचंद्र कविदास जी ने इन्होंने 2 स्टॉल लगा दिए, एक स्टॉल था मटके बेचने वाला और एक था पान और सुपारी बेचने के लिए। तो खुद उन्होंने वैसा वेश धारण कर लिया। तो स्मार्ट पंडित आए, उन्होंने बोला कुछ मटके खरीदने के लिए वहां गए, तो उन्होंने संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया, शुद्ध संस्कृत में। मटके बेचने वाला शुद्ध संस्कृत में, पान और सुपारी बेचने वाला शुद्ध संस्कृत में बातें कर रहे हैं। तो स्मार्ट पंडित बड़े हैरान हो गए, उन्होंने भी संस्कृत में बोला और संस्कृत में उनको हरा दिया। क्या हो गया ये? तो अपने गुरु को पकड़ के लाए, उनसे बहुत वहां पे सीन क्रिएट हो गया, भीड़ भाड़ हो गई कि बहस हो रही है संस्कृत के अंदर, एक के बाद एक श्लोक बोले जा रहे हैं, और कौन बोल रहा है सुपारी बेचने वाला, मटके बेचने वाला, और सबको सबको हरा दिया। तो ये बात भाग के गए। ये राजा नरसिंह ने उस समय के जो विख्यात दिग्विजय पंडित थे रूप नारायण, कहा जाता है रूप नारायण वही था जो रूप और सनातन जी के पास आया था विजय पत्र साइन कराने के लिए, उन्होंने भी विजय पत्र साइन कर दिया था। तो ये रूप नारायण वहां पे भी फेमस था काफी। तो उसको भेजा था उन्होंने, रूप नारायण ने अपने शिष्यों को आगे भेजा था, बात रूप नारायण तक पहुंची, वो भी यहाँ पे आए और राजा नरसिंह में गए तो देखा ये तो सबको हरा रहे हैं। तो रूप नारायण चक्रवर्ती ने बोला ये साधारण नहीं है, और राजा ने बोला ये कैसे है आप लोग हैं मटके बेचने वाला, जिस गाँव के मटके बेचने वाले सुपारी बेचने वाले इतने विद्वान हैं तो गाँव कैसा होगा। तो फिर गंगा नारायण चक्रवर्ती और उन्होंने बताया कि हाँ हम वास्तव में नरोत्तम दास ठाकुर जी के ही शिष्य हैं। और बोले जब शिष्य इतने महान हैं तो गुरु कितने महान होंगे, तो राजा नरसिंह ने भी और रूप नारायण ने भी नरोत्तम जी से दीक्षा प्राप्त कर ली। इस ढंग से उन्होंने बहुत प्रचार किया और जब उनको लगा कि सभी बाकी वैष्णवों का तिरोभाव हो गया तो नरोत्तम जी ने भी सोचा कि अब मुझे तिरोभाव करना चाहिए, इस जगह से जाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी जो प्रतिदिन हम उनका उच्चारण करते हैं, एक लिखी प्रार्थना और दूसरी लिखी प्रेम भक्ति चंद्रिका। एक बार एक व्यक्ति गौर किशोरदास बाबा जी के पास गया और उन्होंने गौर किशोरदास बाबा से पूछा कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने बोला कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए केवल 5 आने चाहिए बस। अरे 5 आने में कृष्ण प्रेम? हाँ 5 आने, 5 आने में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। 5 आने में कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? बोले जाओ मार्केट में और ये 2 किताबें खरीदो, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। इसको पढ़ो, इसको समझो, इसकी शिक्षाओं पर रोज मनन करो, निश्चित रूप से तुम्हें कृष्ण प्रेम मिलेगा। ये इन कविताओं में इतनी शक्ति है। हम देखते हैं कविताओं में बताया गया है गुरु और शिष्य के संबंध कैसे हैं, भक्तों की लालसा में प्रार्थनाएं हैं और राधा कृष्ण का सुंदर गुणगान है, गौरांग प्रभु नित्यानंद प्रभु का गुणगान है और कैसे भक्तों को समर्पित होना चाहिए। प्रतिदिन गुरु पूजा में हम प्रार्थना से ही प्रार्थना करते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती सत्म। तो बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। श्री विश्वनाथ ठाकुर बात कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी की कविताएं वेद वाक्य से अभिन्न है, वैदिक सत्य के समान है। श्रीला प्रभुपाद भी ऐसी समीक्षा करते हैं और कई नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजनों में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य दिए हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर जी लिखते हैं मनेर प्राण कृष्ण रे स्मरण, मन का जो प्राण है वो कृष्ण का स्मरण है और जब कृष्ण का स्मरण मन से जाएगा तो मन एक मृत व्यक्ति की तरह हो जाएगा, क्योंकि उसके प्राण ही कृष्ण का स्मरण है। और जब मृत व्यक्ति होता है उस लाश के ऊपर कौन आते हैं? गिद्ध आ जाते हैं। तो जो गंदे विचार आते हैं, काम वासनाएं आती हैं, ये गिद्ध के समान है और ये तभी आते हैं जब मन में कृष्ण का स्मरण नहीं होता। इसलिए ये इनके इन प्रकार मन कृष्ण निवासी, किसी ना किसी प्रकार से मन में कृष्ण को रखने का प्रयास करना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपनी कविताओं के द्वारा दी। और फिर उनका तिरुभाव की बहुत सुंदर लीला है, बहुत विस्तार में है, हम संक्षेप में बताएंगे, समय हो गया क्षमा करें। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सोचा कि अब मुझे अप्रकट होना है, तो एक बार वो अपने शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती के घर में गए और समाधि में चले गए। 3 दिन तक वो समाधि में रहे और सबने सोचा कि अभी जाने ही वाले हैं, लेकिन जो स्मार्ट ब्राह्मण थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो बड़ा आया था ब्राह्मणों को दीक्षा देने वाला, देखो शूद्रों की तरह मर रहा है, कोई भी चेतना नहीं, कुछ नहीं, शूद्रों की तरह जीवन त्याग देगा। तो ये सुनकर गंगा नारायण चक्रवर्ती जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने प्रार्थना की अपने गुरु से कि इनका मुंह बंद करने के लिए अपना कुछ दिखाइए, महिमा प्रकट कीजिए। और तभी देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी के देह से दिव्य कांति निकल रही है और उनके शरीर पर एक सुनहरा जनेऊ प्रकट होता है और उन्होंने अपनी आंखें वो खोल देते हैं। और ये देखकर सारे के सारे जो स्मार्ट ब्राह्मण हैं वो एकदम चकित हो जाते हैं और जानते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसी घटना को दूसरे ढंग से नरोत्तम विलास में बताया गया कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सोच लिया था कि अब मैंने अपने प्राण त्याग लिए हैं, तो उन्होंने शिष्य को बोला कि आप मेरी चिता बनाने शुरू करो और वो ध्यान में बैठ गए। तो जैसे उनकी चिता बनाई गई नरोत्तम चिता पर लेट गए और ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए। और तब सारे आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए, उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। फिर से गंगा नारायण चक्रवर्ती ने उनको प्रार्थना की कि आपकी निंदा की जा रही है, हमसे सुना नहीं जा रहा। तो नरोत्तम जी फिर से वापिस चेतना में आ गए थे। तो ये पहली लीला है उनकी, फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में बताते हैं कि एक बार नरोत्तम जी सोच लिया कि अब अंततः कुछ महीनों के बाद मुझे प्रकट होने हैं, तो गंगा के तट पे गए और अपने प्रमुख शिष्यों को बोला, गंगा के बीच में ले गए और उनको बोला कि आप मेरे ऊपर गंगा का जल डालिए। और जैसे ही उनके शिष्यों ने उनके ऊपर गंगा का जल डालना शुरू किया, नरोत्तम जी के जितने भी अंग थे वो पिघलने शुरू हो गए, वो दूध में बदल गए और पूरा का पूरा उनका शरीर दूध बनकर एकदम गंगा में ही समा गया। और उनके सब शिष्य क्रंदन करने लगे और उनके आंसू भी गंगा में ही समा गए। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती जी ने वो जो दूध था उसको इकट्ठा किया और फिर उसको जाके अपने घर के पास गांव में उन्होंने समाधि बनाई और वो कहलाती है रोहतम दास ठाकुर जी की दुग्ध समाधि। अभी भी बांग्लादेश में वो समाधि है और भक्त लोग वहाँ पे जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष दिन है, रोहतम दास ठाकुर जी का प्रकट्य दिवस है। उनका प्रकट्य हुआ है हमारे तक चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पहुंचाने के लिए कि कैसे भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए, कितनी तीव्रता होनी चाहिए, कैसे गुरु की सेवा के लिए हमें इतना तत्पर होना चाहिए, किस प्रकार से विनम्रता होनी चाहिए, किस प्रकार से भक्तों के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए, किस प्रकार से भगवान से प्रेम की भीख मांगनी चाहिए, ये सारा रोहतम जी ने अपने जीवन चरित्र से सिखाया। और आज हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी महिमा को अपने हृदय से उनकी प्रशंसा कर सके और उनके द्वारा जो प्रेम दिया जा रहा है उसकी अगर एक बूंद भी हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, नरोत्तम दास ठाकुर भावतिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गोर प्रेमानंदे।